अध्याय 6 मीराबाई की भक्ति का स्वरूप। मीराबाई की उपलब्ध रचनाओं को पढ़ते समय हमें भक्ति साधना के विभिन्न रूप लक्षित होते हैं। प्रसिद्ध है कि उन्हें अपने बचपन से ही श्री कृष्ण की किसी सुंदर मूर्ति के प्रति विशेष आकर्षण हो गया था और वे उसके प्रति भक्ति प्रदर्शन करने लग गई थी। उक्त मूर्ति को उन्होंने सदा अपने निकट रखने की चेष्टा की और उसे अपना इष्ट देव का प्रतीक मान उसका वे पूजन करती रही। श्री कृष्ण की निपट बंकट छवि के साथ अपने नेत्रों के उलझ जाने तथा उनके अंग अंग पर बलि जाने का वर्णन करती हुई वे तन्मय हो जाती दिख पड़ती हैं। जान पड़ता है कि उनके अनुपम सौंदर्य द्वारा वे पूर्णतः प्रभावित हैं। उनकी यह रूपाशक्ति इतनी प्रबल है कि इसके कारण वे एक क्षण के लिए भी स्थिर या शांत रहती हुई नहीं जान पड़ती। उस मनोहर रूप का स्मरण एवं चिंतन करती हुई वे अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती हैं। कहा जाता है कि मीराबाई ने उक्त मूर्ति का सदा षोडशोपचार के साथ पूजन एवं अर्चन किया। श्री कृष्ण को सुंदर सुंदर मूर्तियों के दर्शनार्थ वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में भटकती फिरी। अंत में द्वारिका में प्रतिष्ठित रणछोड़ की मूर्ति की आराधना करती हुई वे उसमें समाकर अंतर ध्यान हो गईं। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि मीराबाई अपने इष्ट देव के भजन एवं कीर्तन के सदा लीन रहती हैं। अपने इष्ट देव की उक्त मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर वे उसकी विविध लीलाओं का गान करती हैं, उसके गुणों का वर्णन करती हैं। वे तजी सिंगार बाधी पग घुंघरू और लोकलाज तजी नाचने को उद्धत हो जाती हैं। वे कहती हैं, गाए गाए हरि के गुण निसदिन मैं काल व्याध से बच गई हूँ। वे सांधा आगे ताल पखावज मृदंग बाजा का वादन होते समय नृत्य करती हैं। अपने इस कीर्तन में इतनी विभोर हो जाती हैं कि लोग उन्हें बावरी तक कहने लग जाते हैं। मीरा की यह साधना पद्धति उक्त पूजन एवं अर्चन में भी कहीं अधिक स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो जाती है और इसकी चर्चा होने लगती है। सर्वसाधारण तक इस बात का प्रचार होता देखकर उनके घर के लोग घबराने लगते हैं। अपने उच्च कुल की मर्यादा का इसके द्वारा उल्लंघन होता हुआ समझकर उनके प्रति कुछ अंशों तक एक प्रकार की घृणा भी प्रदर्शित करने लगते हैं। वे मीराबाई को ऐसा न करने का बार बार अनुरोध करते हैं और जब वे इससे विरत होती हुई नहीं दिखती तो उन्हें कष्ट भी देते हैं। कुछ पदों से प्रकट होता है कि उन्हें अपनी टेक में दृढ़ देखकर महाराणा उनके जीवन का विष द्वारा अंत कर देने तक पर तुल जाते हैं। मीराबाई की साधना का तीसरा रूप उनके निर्गुण संप्रदाय व संत मत विशिष्ट सूरति शब्द योग को अपनाने के संबंध में रचे गए पदों द्वारा भी लक्षित होता हुआ जान पड़ता है। वे त्रिकुटी महल में बने हुए झरोखे से झांकी लगाती और सुने महल में सूरत जमा कर सुख की सेज बिछाती हुई दिख पड़ती हैं। सुमिरन थाल को हाथ में लेकर तथा सेज सुखमणा पर सुशोभित होकर अपने लिए शुभ घड़ी मानती हुई जान पड़ती हैं। वे अपने पिया की सेज का गगनमंडल में होना बतलाती हैं। बिन करताल पखावज की सहायता के भी अपने घर के भीतर अनहद की झंकार सुना करती हैं। अगम के देश की ओर प्रस्थान करती हुई प्रतीत होती हैं। इष्ट देव आदि अनादि साहब निरंजन अथवा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाने की चेष्टा में अपनी सूरत के झकोला खाने की भी चर्चा करती हैं। वे अपने पिया के महल की राह को ऊंची नीची तथा रपतीली बतलाती हैं। उसे विघ्न बाधाओं से पूर्ण भी कहकर उसकी ओर क्रमशः धीरे धीरे अग्रसर होती हुई दिखती हैं। इतना ही नहीं, मीराबाई के कुछ उपलब्ध पदों से संत रैदास का उनका गुरु होना भी लक्षित होता है। एक स्थल पर तो वे स्पष्टतः शब्दों में कह देती हैं, रैदास संत मिले मोही सतगुरु, दीन्हा सूरति सहदानी, मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीराबाई की उपलब्ध रचनाओं के अंतर्गत उक्त तीनों प्रकार की साधनाएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। फिर भी उनमें से किसी न किसी को एक की ही प्रधानता देकर उसके अनुसार मीरा को संप्रदाय विशेष की भक्ति मानने की परंपरा चल निकली है। भिन्न भिन्न लोग उन्हें क्रमशः निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय व निर्गुण संप्रदाय की अनुसारिणी कहने लगे हैं। प्रथम मत के समर्थकों का कहना है कि मीराबाई के पदों में दिख पड़ने वाली उक्त साधना के अतिरिक्त उनके अनुमान की पुष्टि कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा भी होती जान पड़ती है। इसके लिए वे उक्त संप्रदाय की प्रसिद्ध दो वार्ताओं का उल्लेख करते हैं। 252 वार्ता के अनुसार मीराबाई को किसी देवरानी अजब कुंवरबाई को विठल नाथ जी ने अपनी शिष्या बना ली थी। इसी प्रकार 84वें वैष्णव की वार्ता के अनुसार उसका स्वयं पुरोहित रामदास बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुआ था। इसके सिवाय आगे चलकर मेवाड़ राज्य के अंतर्गत श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा जम जाने पर यह सारा प्रदेश उक्त संप्रदाय का एक प्रधान केंद्र बन गया। वहां की किसी एक मूर्ति को मीराबाई का प्रथम इष्ट देव तक मान लिया गया, परंतु उक्त दोनों वार्ताओं की प्रामाणिकता में अभी तक बहुत कुछ संदेह किया जाता है। यदि वे दोनों ऐतिहासिक तथ्यों का सच्चा विवरण देती भी हो तो भी केवल ऊपर दिए गए कतिपय प्रयोगों के आधार पर ही स्वयं मीराबाई का भी पुष्टि मार्गानुगामिनी होना प्रमाणित नहीं होता। 84 वार्ता में आए हुए गोविंद दुबे तथा श्री कृष्ण दास के प्रसंगों से तो यहाँ तक अनुमान किया जा सकता है कि मीराबाई के साथ बल्लभ संप्रदाय वालों का संबंध बहुत अच्छा नहीं था और उसे सुधारने की चेष्टा भी कभी कभी होती रहती थी। मीराबाई को चैतन्य संप्रदाय की अनुगामिनी सिद्ध करने की चेष्टा करने वाले भी इसी प्रकार की चर्चा करते देखे जाते हैं। उनका कहना है कि मीराबाई के समय में श्री रूप एवं सनातन नामक दो गौड़ीय वैष्णवों का प्रभाव वृंदावन में बहुत प्रबल था। उन दोनों के भतीजे जीव गोस्वामी से साथ मीरा की भेंट भी हुई थी। प्रसिद्ध है कि मीराबाई अपनी वृंदावन यात्रा के अवसर पर श्री जीवदास जीव गोस्वामी के मठ पर गई थी। इनके यह कहला भेजने पर कि मैं स्त्रियों से कभी नहीं मिलता, उन्होंने उत्तर दिया था, मैं तो अब तक समझती थी कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सभी लोग केवल स्त्री व गोपी रूप हैं। मुझे आज ज्ञात हुआ है कि भगवान के अतिरिक्त अपने को पुरुष समझने वाले यहाँ अन्य व्यक्ति भी विद्यमान हैं। इस बात से प्रभावित होकर श्री जीव गोस्वामी उनसे बाहर आकर मिले थे। इस घटना के अनंतर मीराबाई का वृंदावन में उक्त गोस्वामी के ही निकट कुछ काल तक ठहर जाना तथा सत्संग करना भी बतलाया जाता है। श्री वियोगी हरि ने स्पष्ट शब्दों में कह डाला है कि मीराबाई के सिद्ध गुरु जीव गोस्वामी ही थे। वे इसी कारण चैतन्य संप्रदाय की ही वैष्णवी थी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एक पद बनाकर उसमें अपने को गौर कृष्ण की दासी भी मान लिया था, परंतु मीराबाई की उक्त वृंदावन यात्रा का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। हमें इस बात का भी अभी तक पता नहीं कि उक्त गौड़ीय वैष्णव भक्तों का भी कभी मेवाड़ की ओर भ्रमण हुआ था व नहीं। मीराबाई संवत 1555 से लेकर के 1603 से श्री जीव गोस्वामी संवत 1568 से लेकर 1653 अवस्था से कुछ छोटे रहते ठहरते हैं और उनके लिए प्रसिद्ध है कि अपनी 20 वर्ष की अवस्था में निरंतर वृंदावन में ही रहे थे। इसके सिवाय श्री वियोगी हरि ने जिस पद का उल्लेख किया है उसका किसी प्राचीन प्रामाणिक संग्रहों में मिलना भी सिद्ध नहीं। उक्त तीसरे मत के समर्थकों का कहना है कि मीराबाई के संत मतानुमोदित भाव पर स्पष्ट रैदासी रंग चढ़ा हुआ है। उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति में वे ही बात लक्षित होती है जो निर्गुण मार्गियों की विशेषता है। फिर भी ये लोग संत रैदास एवं मीराबाई को समकालीन सिद्ध करने में सफल होते हुए नहीं दिख पड़ते। इनके उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने की चर्चा भर कर देते हैं। अब तक उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर उक्त दोनों का समसामयिक होना न देखकर कुछ लोग यह भी अनुमान करने लगे हैं कि मीराबाई के ऊपर कदाचित संत रैदास की वाणी का पूर्ण प्रभाव रहा हो अथवा वे किसी रैदासी संत की शिष्य रही हो। नाभादास की प्रसिद्ध भक्तमाल से पता चलता है कि भक्त विठ्ठलदास रैदासी कहलाते थे, किंतु उनके समय का भी कोई संकेत नहीं मिलता। चित्तौड़ में निर्मित महाराणा कुंभा के कुंभ श्याम वाले मंदिर के निकट ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसे मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर के निकट सामने बनी हुई एक छतरी के नीचे संत रैदास की पादुका व चरण चिन्ह बने हैं। छतरी के भीतर भाग में चरण चिन्हों के ठीक ऊपर एक विचित्र आकृति बनी हुई है जिसमें एक मुख, दो हाथ और दो पैर दिख पड़ते हैं और जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति पांच जोड़े पैरों के द्वारा घूम रहा है। आकृति के एक हाथ में कोई छोटी सी कटारी जैसी वस्तु है जिसे रैदास की रामपे या चमड़े काटने का हथियार विशेष कहा जाता है। आकृति के ललाट पर वैष्णव भेद के अनुकूल तिलक भी निर्मित है जिसे उसे रैदास सिद्ध करने के प्रमाण में दिखलाया जाता है। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी उसे संत रैदास की ही प्रतीक मान लेना अन्य प्रमाणों के अभाव में उचित नहीं कहा जा सकता। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या तब माना जाए जब उनका समय और भी पहले स्थिर हो सके। वे महाराणा कुंभा मृत्यु संवत 1525 की पत्नी सिद्ध हो, जैसा कि बहुत काल से आती हुई जनश्रुति के आधार पर कर्नल टार्ड ने अनुमान किया था। ऐसी दशा में उनका श्री वल्लभाचार्य संवत 1536 से लेकर के 1587 अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु संवत 1542 से लेकर 1591 के संप्रदायों की अनुगामनी होने का प्रश्न भी आप से आप गिर जाएगा। मीराबाई की भक्ति का स्वरूप वास्तव में उनके पदों में आए हुए कतिपय संकेतों के आधार पर ही नहीं निश्चित किया जा सकता, न ऐसे किसी निर्णय के प्रमाण में कुछ किंवदंतियों की सहायता से लेने से ही काम चल सकता है। इसके लिए हमें मीराबाई के जीवन वृत्तों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह भी देखना होगा कि उनका मानसिक विकास किस प्रकार हुआ था। मीराबाई की जीवनी से संबंध रखने वाली जो कुछ भी सामग्री आज तक उपलब्ध है उससे पता चलता है कि उनके जीवन में दो नितांत भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं उनके ऊपर बराबर प्रभाव डालती रही। इन दोनों में से एक उन्हें अपने स्वजनों से रहित कर इनकी मानसिक प्रवृत्ति को सदा खेदयुक्त एवं शोकाकुल करती आई और दूसरी उसे श्री कृष्ण की ओर अधिकाधिक ले जाती रही। कहा जाता है कि उनकी केवल 5 व 6 वर्ष की ही अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया और फिर कुछ ही पीछे उनके पिता भी मर गए। अपनी माता के मर जाने के अनंतर वे अपने दादा राव दूधा जी के साथ रहती रही और उनके पिता बहुधा लड़ाइयों में भाग लेते रहे। जब राव दूधा जी का देहांत हो गया और उनके पति भोजराज एवं ससुर महाराणा भी चल बसे तो उनका आत्मीय वर्ग प्रायः नष्ट हो गया। वे क्रमशः अपने को अकेली तथा सुख विहीन समझने लगी तथा उनका मन बराबर खिन्न एवं विरक्ति पूर्ण रहने लगा। परंतु एक ओर जहां उनका अपने स्वजनों से विछोह होता जा रहा था, वहां दूसरी ओर वे श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक खिंचती जा रही थी। संसार की ओर से बढ़ती हुई उदासीनता उन्हें क्रमशः आध्यात्मिक चिंतन की ओर प्रवृत्त होने के लिए विवश भी कर रही थी। मीराबाई के बचपन में उनका पोषण राव दूधा जी के यहाँ ही हुआ था, जो एक परम वैष्णव भक्त थे। अतएव श्री कृष्ण की मूर्ति, जिसे अपने दादा के यहाँ रहते समय उन्होंने सर्वप्रथम कदाचित एक बाल सुलभ खिलवाड़ के लिए ही अपनाया था, क्रमशः उनके इष्ट देव का रूप ग्रहण करने लगी। एक साधारण गुड़िया की श्रेणी से निकलकर भगवान में परिणित हो गई। फिर तो पति का देहांत हो जाने पर उनके लिए आधार बन जाना तक स्वाभाविक हो गया। वे उसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्रतिकीर्ति मानकर उनका गुणगान करने तथा उन्हें रिझाने का एकमात्र साधन समझने लगी। अंत में भगवान के प्रति अनुरक्ति उनकी उनके भक्तों के साथ भी आत्मीयता स्थापित कर दी, जिनके सत्संग के प्रभाव से उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा मिल गई। इस प्रकार यदि मीराबाई के मानसिक विकास को उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों के दृष्टि से देखते हैं तो हमें उनकी भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने में अच्छी सहायता मिलती हुई दिख पड़ती है। कोरे मूर्ति पूजन से आरंभ होकर क्रमशः अवतारी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करने और अंत में उन्हें निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखने में परिणित हो जाना उनकी भक्ति के विकास का रूप रहा। इस प्रकार उसके अंतर्गत उन सभी साधनाओं का भी उसमें समावेश पा जाना भी कोई असंभव बात न थी। वैद्य विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होता जाना भी स्वाभाविक है। यदि अनुकूल परिस्थितियों का सहयोग प्राप्त होता रहे तो यह भी आवश्यक है कि उसमें स्थूल से सूक्ष्म एवं सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हो। मूर्ति के विधिवत पूजन एवं अर्चन की परंपरा भी वल्लभाचार्य के बहुत पहले से ही चली आती थी। कीर्तन की पद्धति कम से कम देवर्षि नारद से लेकर संत नामदेव तक भली भांति प्रचलित हो चुकी थी। इन दोनों के लिए दीक्षा अपेक्षित न थी। निर्गुणोपासना के रहस्य को समझने के लिए तथा उसके पारिभाषिक शब्दों से परिचित होने के लिए सत्संग की आवश्यकता थी, जो मीराबाई के संबंध में संभवतः उनके घर साधुओं के आते रहने तथा उनकी तीर्थ यात्रा आदि से पूरी होती गई। मीराबाई द्वारा प्रयुक्त संत मत की शब्दावली मात्र से केवल इतना ही पता चलता है कि उन्हें इसका भी कुछ परिचय अवश्य रहा होगा। इस प्रकार की सामग्री उन्हें सूरती शब्द योग की साधना से पूर्णतः दक्ष सिद्ध करने के लिए अभी यथेष्ट नहीं की जा सकती। इसके सिवाय उनकी सारी उपलब्ध रचनाओं पर विचार करने पर उन्हें एक सगुणोपाशिका कहने की ही प्रवृत्ति होती है। उनका श्री कृष्ण के रूप के प्रति प्रबल आकर्षण, उस अनुपम सौंदर्य का बार बार वर्णन करना और अपने इष्ट देव को एक साकार एवं सजीव पति के रूप में मानकर उसके विरह में अधीर होना उनके निर्गुणोपासिका होने में बाधा उपस्थित करते हैं। सच तो यह है कि मीराबाई का लगाव संभवतः श्री कृष्ण की ही एक मूर्ति विशेष के साथ आरंभ हुआ था। उसके मूल रूप के प्रति वे क्रमशः अधिकाधिक आकृष्ट होती गई। तीर्थाटन द्वारा उसकी अन्य मूर्तियों से भी परिचित हो जाने पर उनकी भावना और भी व्यापक और परिष्कृत होती गई। अंत में अवतारी श्री कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप तक मान लेने पर भी वे एक मूर्ति में ही लीन हुई। मीराबाई की भक्ति का स्वरूप उस प्रेमा भक्ति के समान है जिसके व्यापक भाव के अंतर्गत सभी साधनाओं का समन्वय सा हो जाता है। जिसके पूर्णतः व्यक्तिगत व आत्मगत होने के कारण किसी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं पड़ती और जिसमें तद अर्पिता अखिला चरिता व तद द्विस्मरणे परम व्याकुलता अर्थात सभी कुछ को अपने प्रेम पात्र के प्रति अर्पित कर देने तथा उसके लेश मात्र भी स्मृति में अधीर एवं बेचैन हो जाने की दशा स्वभावतः उत्पन्न हो जाया करती है।